ஓம் சாந்தி. பாபா கீஷ் தபோவன் மே மதுபன் கர் மே ஆப் சபி மிட்டி சக்ரீன் பன்னே ஹி ஆயே. மதுபன் சப்த ஹி மதுர்தா ஔர் வைராக்ய கா சூச்சக் ஹை. மது சஹத் கோ கேதே ஹை நா, மிட்டாஸ் கி நிஷானி ஹை ஔர் வன் வைராக்ய கி நிஷானி ஹை. तो इस मधुबन की भूमि पर आना माना ही इन दोनों बातों का बैलेंस. एक तरफ मधुरता आ जाए, मिठास आ जाए जीवन के अंदर, और दूसरी तरफ इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य आ जाए, क्योंकि परिवर्तन का आधार तो वैराग्य ही है. जब तक अंदर से वैराग्य नहीं आता तब तक कोई चीज छोड़ी नहीं जा सकती, त्याग नहीं की जा सकती. तो जो भी संस्कारों के अंदर कड़वाहट है, खारापन है, उसको निकालना है. और बहुत मीठी सैक्रीन, जैसे सैक्रीन वो छोटी सी गोली कितना मिठास पैदा कर देती है, ऐसे ही आत्मा जो इतनी सूक्ष्म है, वो इतने दिव्य संस्कारों से, प्योर संस्कारों से भरपूर हो जाए. जैसे बाबा, उनके दिव्य संस्कार जिनके आधार से हर एक बच्चे को मिठास का अनुभव होता, अपनेपन का अनुभव होता है. मिठास कोई चीज तो नहीं है, लेकिन उनका प्यार, उनके स्नेह भरे बोल, उनकी बहुत प्यारी मीठी दृष्टि, उनके अच्छे वाइब्रेशन आत्मा को अपनी तरफ खींचते हैं, समान भव का वरदान दे देते हैं. तो आप सभी बाबा के अंग संग्रह करके, अंग संग्रह न माना, बाबा की याद में अगर हम रहते हैं तो अमृत वेले से रात्रि तक जो बाबा की याद में रहते हैं, उनके संग रहते हैं, उनको संग का रंग लगता है. किसी के भी संग रहो, कोई अगर नेगेटिव व्यर्थ सोचने बोलने वाले व्यक्ति का संग आपको मिल जाए तो थोड़ा समय के बाद उसके संग का प्रभाव पड़ता है, धीरे धीरे अंदर अंदर हर एक के प्रति वैसा ही दृष्टिकोण बनने लगता है. हम बाबा के संग सदा रहते हैं. बाबा पतित पावन है, इवर प्योर है, और जो बच्चे उसके अंग संग रहते हैं उसको उसका रंग तो लगता ही है. इसलिए ध्यान देने की बात है कि हम सबके अंदर इतनी मिठास, इतनी दिव्यता, इतनी पवित्रता, इतनी अलौकिकता आ जाए, जैसे सैक्रीन के अंदर सब कुछ भरा होता मिठास का लक्षण, ऐसे आत्मा में वो सब दिव्य गुण भर जाए, समा जाए, अवगुण निकल जाए. निकालने की तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है. मान लो आज अंधकार हो जाए तो अंधकार का कोई सोर्स नहीं होता, लेकिन अगर लाइट एक कहीं जल जाए छोटी सी तो पूरे अंधकार को खत्म कर देती है. लाइट का सोर्स है, लाइट कहीं से मिल रही है. तो जब बाबा की लाइट हम सबको मिल जाती है तो अज्ञानता का जो अंधकार आ गया है, जो देह अभिमान से आ गया है, वो अपने आप समाप्त हो जाता है. इतने समय से हम सब इस देह भान में रहे, देह भान से कर्म इंद्रियों की उत्तेजनाएं होती हैं, कर्म इंद्रियां उसके कारण चलायमान होती हैं, और देह अभिमान, एक है भान और एक है अभिमान। जब अभिमान आ जाता है तो अभिमान तो संबंधों में कड़वाहट पैदा कर देता है, चलने में, बोलने में, देखने में। उसको लगता नहीं है मेरे अंदर अभिमान है, लेकिन दिखाई जरूर देता है कि ये जो चल रहा है, बोल रहा है, देख रहा है, कह रहा है, ये सब में कुछ न कुछ इसके अंदर मैं है, मैं कुछ हूं। बाबा खुद भी बहुत नम्रचित, बाबा का एक शब्द साकार का था, इतना मुलायम। ब्रह्मा बाबा को बना दिया अपने समान, जो जरा भी कोई उनको देखने से, उनके साथ बैठने से, उनके बोलने से अहम भाव दिखाई नहीं दिया। इतना नम्र चित्त, निर्माण चित्त बन करके रहे और अपने समान अपनी दादियों को, बच्चों को भी ऐसा बना दिया। उनके सामने भी जाओ तो वही मधुर बोल, वही मीठी दृष्टि, वही सुभावना संपन्न महावाक्य हम सबने सुने हैं। तो बाबा हम सबको देहभान समाप्त करने के लिए तो कहते हैं बच्चे, जितना हो सकता है अपने को आत्मा निश्चय करके इन कर्मेंद्रियों का आधार लो और इनसे अलग हो जाओ। प्रैक्टिस करते हैं हम सब, कर्मयोगी हैं, कर्म में रहते हैं, कर्म क्षेत्र पर हैं। कर्म छोड़ करके तो हमें योग करना नहीं है, कर्म करें और करके न्यारे हो जाएं। इसके लिए हम अभ्यास करते हैं कि हम अपने कर्म क्षेत्र पर, एक है कर्म का बंधन, एक है कर्म का संबंध। बंधन बांधता है, कोई सेवाओं का बंधन आत्मा को अपनी तरफ खींचता है, वो दुख देता है। संबंध, सेवाएं हैं, करना है, जरूरी है, करते हैं, संबंध है उनसे, लेकिन वो संबंध बंधन न बन जाए उस पर बहुत ध्यान देना। सेवाएं करते करते, कर्म में आते आते कई बार कर्म अपने बंधन में बांध देते हैं। कर्म संबंध के लिए हम शरीर में आते हैं, पाठ बजाते हैं, कर्म करते हैं। शरीर निर्वाह के लिए बाबा ने सबको छुट्टी दी है, खूब अच्छी तरह से कर्म करो, 6 घंटा 8 घंटा खूब बिजी रहो, लेकिन कर्म में बंधना नहीं। कर्म किया, कर्म से न्यारे बन गए। जो न्यारे प्यारेपन का अभ्यास है, कर्म इंद्रियों का आधार लो, कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ और बीच बीच में कर्म करते करते अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों का आधार ले करके कर्म कर रही हूं, करा रही हूं। इससे देह अभिमान, देह भान तो पहले समाप्त हो जाएगा, इंद्रियां शीतल हो जाएंगी, स्वभाव में सरलता आ जाएगी, मधुरता आ जाएगी। फिर अभिमान जो आता है बार बार, मैं करता हूं, मेरा नाम हो, मेरा मान हो, मेरा शान हो, मैंने इतना सब कुछ किया है, लोग मुझे पहचानते नहीं हैं, करता मैं हूं, नाम इसका होता है। कई बार ऐसी भावनाएं आती हैं आपस में कि इतना सब मैंने किया, तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, सब प्रकार से मैं सेंटर्स के, बाबा के कार्य में सहयोग दे रहा हूं, लेकिन मेरा नाम तो कहीं आता ही नहीं है। इसका नाम हो रहा है, कुछ भी नहीं करता है, बैठा है, खाता पीता है। कई बार ऐसे आपस में संबंधों में नाम की बहुत भूख रहती है, नाम मेरा हो जाए, कोई लोग मुझे बड़े पहचाने, कम से कम हमें कभी स्टेज पर चांस मिले। बाबा कहता, बच्चे हद का नाम चाहिए क्या? आपके बेहद के नाम से तो आज कितनी आत्माएं अपना शरीर निर्वाह कर रही हैं। क्या है आपका बेहद का नाम? आप सब ब्राह्मण कुलभूषण हैं। शरीर के नाम की बात नहीं है, लेकिन संगम युग पर हम सब ब्राह्मण बन गए तो हम ब्राह्मणों के नाम से, नामधारी ब्राह्मण कमाई कर रहे हैं। उनको ही हर कार्य में बुलाते हैं, उनको ही आगे रखते हैं। कोई भी शुभ कार्य होगा, ब्राह्मणों को ही सब चीजें मिलेंगी, खाने की, पीने की, सब। तो बाबा कहते हैं कि आपके नाम से तो ब्राह्मण आत्माएं कितना लाभ ले रही हैं, और मान बाबा ने इतना बच्चों को दिया है, कोई आत्माएं क्या देंगी कि मेरी महिमा हो जाए, मुझे कोई कुछ तो कम से कम मुझे पहचान ले कि मैं भी कुछ करता हूं। बाबा कहता है देखो, मैं आप बच्चों का मान इतना करता हूं जो अपने से भी ऊंचा बना देता हूं। मेरी सिंगल पूजा होती है, शिवलिंग के रूप में होती है, और आप बच्चों की तो डबल पूजा होती है। शालिग्राम ही रूप में पूजे जा रहे हो और देवी देवताओं के रूप में भी पूजे जाते हो, तो मैंने तो आप बच्चों का इतना मान बढ़ाया है जो कलयुग के अंत तक भी लोग बड़े रिगार्ड से, रिस्पेक्ट से आपको देखते हैं, आपकी मूर्तियों के आगे नमन करते हैं, वंदना करते हैं, कुछ न कुछ डिमांड रखते हैं अपनी, उनकी कामनाएं आपकी मूर्तियों के दर्शन से पूरी होती हैं। इतना मैंने आपको महिमा योग्य बनाया, इतना महान बनाया, तो नाम भी इतना ऊंचा किया, मान भी इतना दिया, और शान कैसी है? देहमान वाली शान नहीं है, हमारा कोई पद है, पोजीशन है। कई बार इसका एक सूक्ष्म रहता है, मान लो कोई हमारा बायोडाटा भी अगर ठीक नहीं पढ़ता है, नहीं बोलता है, तो भी लगता है क्या पढ़ रहा है, क्या बोलते हैं, लेकिन ये भी तो अभिमान है ना। क्या बायोडाटा पढ़ना, क्या हमने किया है, करण करावनहार बाबा है, किसी बच्चे से भी करा सकता है, अगर वो हमसे करा रहा है तो मेरा भाग्य बना रहा है। इसमें क्या दिखाना है, कौन सी शान है इसमें कि मैंने ये सब किया है, उसने निमित्त बना दिया, बाकी करा तो वही रहा है। मुझे तो आज तक यही अनुभव होता है, आप समझ सकते हो, इतने सारे ब्राह्मण परिवार की पालना बाबा की मुरलियों से होती है। मुरलीधर बाबा है, करण करावनहार बाबा है, हमको तो सिर्फ बीच में दलाली मिल जाती है, महिमा हो रही है, कर तो कुछ नहीं रहे हैं। कभी कभी बैठ जाते हैं, बाबा को कहते हैं बाबा आपके बच्चे हैं, आज 10 लाख से भी अधिक परिवार मुरली सुनते हैं, कितनी भाषाओं में मुरली छप रही है, सबका जीवन, ब्राह्मण जीवन का आधार मुरली है। अगर आप कुछ भी मुझ आत्मा को टच कर देंगे तो सबको मिल जाएगा। तो बाबा की याद में, प्यार में बैठ जाते हैं, बाबा करा लेता है, उंगलियां चल जाती हैं। अगर मैं कुछ कर रहा हूं, मुझे कुछ आता है, मैंने कुछ स्टडी की है, मेरा कुछ अनुभव है, उसका तो कभी आज तक संकल्प ही नहीं आया, कराने वाला करा रहा है। उसके बच्चे हैं, उसको पालना करनी है, उसको संपन्न संपूर्ण बनाना है, और उसके लिए आधार तो केवल पढ़ाई ही है, पढ़ाई के आधार से ही बन रहे हैं। तो क्या उसको पढ़ाना है, कैसे उसको पालना करनी है, वो जानता है, मैं नहीं जानता। लेकिन हम एक ही लक्ष्य रखते हैं कि हम बाबा के बहुत राइट इंस्ट्रूमेंट बन करके रहें, उसमें अपनी जरा भी मन की मत, पर की मत मिक्स होने न दें। बाबा ने जो बोला है, जैसा बोला है, जितना बोला है, उसके अलावा न मैं क्लास में कोई बोल दूं शब्द, न कहीं लिख करके भेज दूं, कर सकता हूं क्योंकि कोई कहने वाला नहीं है मेरे आगे पीछे, कोई जांच करने वाला नहीं है, लेकिन बाबा का कार्य है, बाबा ने जो पढ़ाया है, जो सिखाया है, जो दिया है, और जो देना चाहता है वो करा रहा है। इसमें जरा भी अभिमान नहीं आता, मैंपन नहीं आता, बहुत आत्मा निमित्त भाव से नम्र चित बन जाती है। अभी सब बच्चों को बाबा चाहते हैं, एक गुण सब गुणों को ले आता है, जैसे एक अवगुण सब अवगुणों को ले आता है। अवगुण लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती, सिर्फ आपको अभिमान है, देह का अहंकार है, देह अभिमान है, तो उसकी रचना काम, क्रोध, लोभ, मोह सब एक के पीछे आ जाते हैं। अभिमान को अगर नहीं मारा किसी ने तो कई विकार उत्पन्न हो जाएंगे। अगर मान लो आप कहते हो हमारे अंदर काम विकार नहीं है, हमने जीता है, लेकिन थोड़ा क्रोध का तो अंश है, तो क्रोध कई विकारों को उत्पन्न कर देगा। क्रोध से पता चलेगा इसको अभिमान कितना है अपनेपन का। अधिकार कितना ये रख रहा है दूसरों के ऊपर, इसके अंदर आसक्तियां कितनी है। तो एक क्रोध विकार अनेक विकारों को ले आता है। ऐसे ही अगर एक कोई विशेषता, एक कोई गुण हम अटेंशन दे करके धारण कर लें, जो कहते हैं आज बाबा ने कहा कि एक मीठी सैक्रीन बन जाओ, अगर आत्मा इस मिठास को धारण कर ले कि मुझे कभी भी अपनी वृत्ति से, अपनी दृष्टि से, अपने बोल से कड़वाहट का अनुभव नहीं कराना, बाबा ने मुझे मीठा बनाया है। हमारी बोल की भाषा जो है वो बहुत मीठी मधुर हो तो नेचुरल है, हम सबकी विशेषताएं देखेंगे तभी हो सकता है। अगर हमारे अंदर कोई की भी कमियां, कमजोरियां, अवगुण नोट हैं, कितना भी हम चाहें इसके प्रति हमारा व्यवहार मधुर हो जाए, लेकिन कम से कम आएगा सामने तो भले दिखावे में दो शब्द अच्छे बोल भी दें, लेकिन अंदर अंदर तो उसके प्रति कुछ न कुछ वाइब्रेशन में नेगेटिविटी होगी। तो केवल बोल की मधुरता जरूरी नहीं है, लेकिन मधुरता चाहिए हमारे संकल्पों में, हमारी वृत्तियों में, हमारी दृष्टि में। सर्व आत्माएं निर्दोष हैं, जब तक ये भावना नहीं आएगी तब तक मधुर व्यवहार नहीं हो सकता। और निर्दोष वही समझ सकता है जो इस बेहद नाटक को यथार्थ समझता है। ये बेहद का नाटक खेल चल रहा है सृष्टि मंच पर, आत्माएं नाटक करने के लिए अवतरित हुई हैं, खेल है ये सृष्टि में, इसलिए संबंध बने हैं। जैसा हमने पार्ट बजाया उस पार्ट के अनुसार हमें भिन्न भिन्न संबंध मिले, अनेक प्रकार के खिलाड़ी मिले, और वो साथ निभा रहे हैं, हम साथ उनके हैं। अभी कोई कहे ये ही मेरा बच्चा है, ये ही मेरा पति है, ये ही मेरी पत्नी है, ये मेरी सासू है, अब वो जो मेरेपन का बंधन उसने बना लिया वही दुख का कारण बन गया है। कुछ नहीं मेरा, थोड़े समय के लिए पार्टधारी पार्ट बजाने के लिए आए, संबंध बन गए, आज हैं कल बिछुड़ जाएंगे। लेकिन ये बेहद नाटक की जो स्मृति रहती है, नाटक चल रहा है, ये खेल चल रहा है, इस खेल के अंदर हमें बहुत न्यारा प्यारा बन करके खेलना है, पार्ट बजाना है, न कहीं फंसना है, न किसी को अपने में फंसने देना है। जैसे बाबा पार्ट बजाता है, देखो शिव बाबा का पार्ट देखो, बाबा ने अपने समान ब्रह्मा बाबा को बना दिया, उनका पार्ट देखो, फिर दादियां आई, दादियों का पार्ट देखो, इतने बच्चों की पालना की, इतना स्नेह लुटाया, लेकिन न कहीं फंसी, न किसी को अपने में फंसने दिया। ब्रह्मा बाबा कितना प्यार का सागर, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा समान बन गए थे, इतना बच्चों को स्नेह पालना सब कुछ दे करके, मीठे बोल, मीठे बच्चे कह करके, और एक सेकंड में शरीर से अलग हो गए, डिटैच हो गए, कोई ने भी एक दुख का आंसू भी नहीं भा पाया। तो ऐसी ब्रह्मा बाबा ने अपनी स्थिति बनाई, केवल एक गुण नहीं धारण किया, लेकिन एक गुण के आधार पर उनके अंदर सर्व गुण आ गए, सर्व गुणों से संपन्न आत्मा बन गई। आज आप एक शांति का गुण ले लो, मैं शांति स्वरूप आत्मा हूं, अब एक शांति के गुण में गंभीरता भी आ जाएगी, अंतर्मुखता भी आ जाएगी, धैर्यता भी आ जाएगी, और जब धैर्यता आ जाएगी तो मधुरता भी आ जाएगी, है एक गुण। लेकिन अगर एक गुण पर भी हमारा ध्यान गया कि इस पर मुझे विशेष पुरुषार्थ करके, अटेंशन दे करके नंबर आगे लेना है, तो हमारी जितनी देवी देवताएं हैं, जितनी देवियां हैं, उनके एक एक गुण के गायन है सर्वगुण संपन्न। आज सरस्वती विद्या की देवी गाई हुई है, दुर्गा, काली, लक्ष्मी हर एक एक विशेषता में संपन्न है। जैसे डॉक्टरी के अंदर कोई आंख का डॉक्टर, कोई कान का डॉक्टर, कोई गले का डॉक्टर, कोई हार्ट का डॉक्टर, सब अलग अलग हैं, लेकिन पढ़ाई तो उसने डॉक्टरी की पूरी की है, एक में स्पेशलिस्ट हो गया। ऐसे ही हमें बनना तो सर्वगुण संपन्न है, लेकिन एक विशेष गुण में हम बहुत निपुण हो जाएं, आगे हो जाएं, एक पर अटेंशन दो, ये गुण हमारे अंदर आ जाएगा तो इसके पीछे पीछे सब गुण आ जाएंगे। तो जो आत्मा सैक्रीन है, मिठास है, केवल इसी बात पर अगर आज की मुरली के अनुसार हम अटेंशन दें, मिठास कहाँ से आई, किस तरह से मिठास आत्मा के अंदर आई। बाबा ने दो तीन शब्द मुरली के अंदर बहुत अच्छे दिए हैं कि जब आत्मा संपूर्ण सतो प्रधान है तो मीठी है, संपूर्ण पावन है, पवित्र है। पवित्रता की बहुत गहरी परिभाषा है। और बाबा ने जिस दिन हम ब्राह्मण बच्चे बने, पहला ही महामंत्र के रीति से स्लोगन मिला, पवित्र बनो योगी बनो, पहले दिन का पाठ है, बी होली बी योगी। और उसी आधार से सारी पढ़ाई चल रही है, और जब तक आत्मा संपूर्ण पावन नहीं बनेगी तब तक ये पढ़ाई चलती रहेगी। अगर आत्मा बिल्कुल प्योर शुद्ध बन जाए मन वचन कर्म से, प्योरिटी केवल ब्रह्मचर्य व्रत की नहीं है, केवल एक काम विकार की जीत नहीं है, लेकिन जब पवित्रता शब्द हम कहते हैं तो पवित्रता के अंदर सभी विकार आ जाते हैं। देखो बाबा ने तीन शब्दों का ही पुरुषार्थ करके कर्मातीत स्थिति प्राप्त की, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। निर्विकारी में अहंकार भी आता है, उसको भी जीतना है, लेकिन निर्विकारी बनने के बाद निरहंकारी शब्द का भी प्रयोग किया। कई बार आत्माएं योगी तपस्वी निरहंकारी बन करके, निर्विकारी बन करके भी मैं हूं उसका भान आ जाता है, मैं निर्विकारी हूं, मैं पवित्र हूं, मैं अच्छा योगी हूं, मैं अनुभवी हूं, अहंकार अंदर ना आए। इसलिए बाबा कहता है निर्विकारी बनने के बाद भी अंडरलाइन करो, मुझे निरहंकारी रहना है। तो निरहंकारीपन से मधुरता का गुण अपने आप आ जाता है। जो निरहंकारी नम्रचित हैं, निर्माणचित होकर के रहते हैं, उनके बोल बड़े मीठे हो जाते हैं, उनके वाइब्रेशन बड़े अच्छे हो जाते हैं, उनके समीप सभी आना चाहते हैं, उनसे कोई दूरी नहीं बढ़ाते, समझते हैं इनसे कुछ मिलेगा। हमारी कई ऐसी दादियां थी ना, जब यहां बैठ जाती थी आंगन में, सिर्फ उनको कुर्सी पर बिठा देते थे, चारों तरफ से जैसे कोई मीठी चीज कहीं रखी होती है ना तो चींटियां आ जाती हैं, चारों तरफ से घेर लेती हैं उसको। ऐसे अगर दादियां यहां कहीं एक बैठ गई आकर के, तो देखो इधर से भाई आ रहे, इधर से बहने आ रही, सब उनको ऐसे घेर लेते थे। वो बोलती कुछ नहीं है, कहते कुछ नहीं है, लेकिन उनकी जो वाइब्रेशन कहें, उनके हाव भाव कहें, उनकी जो दृष्टि कहें, वो जो इतनी प्योर है, मीठी है, वो सबको खींचती है चुंबक की तरह। बाबा अपने बच्चों को ऐसा चुंबक बनाना चाहता है, सब आत्माएं आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगी। दैहिक आकर्षण नहीं, ये रूहानियत की आकर्षण। जितना अपने रूहानियत की स्थिति में आप रहेंगे, मैं आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली रूह अलग हूं, ये शरीर अलग है, नियत में माना आदत में ही आ जाए कि मैं आत्मा, ये आत्मा, सब आत्माएं अपना अपना खेल खेल रही हैं। तो इन दादियों ने बहुत गहरा पुरुषार्थ ये किया, शरीर भान को उन्होंने गला दिया, बिल्कुल एक आत्मिक स्वरूप और सब निर्दोष भावना से, सब अच्छे हैं, बाबा के सब बच्चे बड़े अच्छे हैं, सब विशेष हैं, विशेष आत्माओं का संगठन है। उनके दिल में जैसे कूट कूट के भरा था, ये सब विशेष आत्माएं हैं। कोई उनकी किसी की ग्लानी करे आकर के, कंप्लेन करे, कोई बात सुनाए, कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, भले अटेंशन खिंचवाया, क्लासेज करवाई, कुछ न कुछ शिक्षा सावधानी अलग से दी, लेकिन अपने मन में उनकी कभी भी नोट नहीं की कमियों को। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी किसी की कमियों को नोट नहीं करो, लेकिन अपने सहयोग का उसको नोट दे दो, मदद करो, उसकी कमियां समाप्त हो जाएं। किसमें नहीं है, कोई कहे मैं तो संपन्न बन गया हूं, संपूर्ण बन गया हूं, और जब सब में वो कमी कमजोरी है तो फिर अहंकार किस चीज का है। हर एक अपना पुरुषार्थ कर रहा है, हर एक चाहता यही है कि मैं अपनी कमी कमजोरी को परिवर्तन करूं। इसलिए अगर सचमुच सैकरीन बनना है तो ध्यान देना, कभी किसी की कमी कमजोरियों को नोट नहीं करना। हैं सब में, ऐसा नहीं कोई संपन्न बन गए हैं। दो ही बातें बाबा कहते हैं, किसी की विशेषताओं पर प्रभावित हो जाना, ये बड़ा विशेष है, सहयोगी है, स्नेही है, बहुत अच्छे संस्कार वाला है, बड़ा मीठा स्वभाव वाला है, कोई व्यक्ति विशेष आकर्षण करने लगे, वो लगाव का कारण है, वहां झुकाव हो जाएगा, वो बंधन बन जाएगा। इस बात को अपने लौकिक जीवन के अंदर नोट करके देखना, जो बहुत अच्छे लगते हैं उनकी तरफ झुकाव हो जाता है, लगाव शुरू हो जाता है, और उनके अचानक जाने से बहुत आत्मा बहुत दुखी होती है, पीड़ित होती है, वो कर्म बंधन है। इसलिए हम सबको न किसी से इतना लगाव रखना है, न अटैचमेंट रखनी है, और न किसी से नफरत करनी है। हर एक आत्मा बहुत श्रेष्ठ है, महान है, पवित्र है। जब ऐसी भावनाएं हमारी बन जाएंगी तब वो मिठास हमारे से झलकेगी, दिखाई देगी। तो निर्दोष एकदम वृत्ति है, शीतल काया है, शीतल स्वभाव है। हम सबके स्वभाव जो है ना, बड़े शीतल सरल हो जाएं, मिलनसार हो जाएं, एक बहुत अच्छा गुण है। विदेशी बच्चों को कई बार बाबा सिखाते थे, हर बात में, हर स्थान पर, हर एक के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लो। एडजस्ट करना एक बहुत बड़ी विशेषता है। अगर हम इस समय जहां पर भी रहते हैं, जिन परिस्थितियों में रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ सेवाएं कर रहे हैं, उनके साथ हम एडजस्ट नहीं हो पाते, तो मैं आज कहीं सुना रहा था, हमारी दादी जी और हमारी मोहिनी बहन जी दो जने साथ रहते थे, एक ही कमरे में थे। दादी जी की प्रकृति और मोहिनी बहन जी की प्रकृति में, शरीर की प्रकृति कह रहा हूं, नेचर अलग चीज है, प्रकृति भी दोनों को बहुत भिन्न थी। माना कमरे में अगर सोए हैं तो एक को पंखा चाहिए, ठंडी शीतलता चाहिए, हवा चाहिए, और दादी को अगर जरा भी पंखा चला दो, हवा दे दो, तो उनको छींके आने लगती थी, प्रकृति बड़ी ठंडी थी। अब एक ही कमरे में दोनों को रहना है, एक ही साथ रहना है, ऐसे भी नहीं कह सकते हैं मैं तो नहीं सो सकती तेरे साथ। मिलनसार, एडजस्ट करने की नेचर, सहन करना पड़ेगा, यहां पर कुछ तो सहन करना पड़ेगा, लेकिन टकराव ना हो। ऐसे न कहें दो लोग भी साथ नहीं रह सकते, तो दादी कहती थी, मोहिनी तुम पंखा चला ले, मैं रजाई ओढ़ के सो जाती हूं। अब रात को मान लो दादी जी की नींद फिट गई, तो दादी ऐसे नहीं लाइट जला करके उसकी भी नींद फिटा दें, सामने वाले की चारपाई पलेटी है, नींद नहीं आ रही है, तो अपने बाजू में एक छोटा सा टेबल लैंप रखती थी, टेबल लैंप जला करके मुरली उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। मुरली फिर से पढ़ने पढ़ते पढ़ते फिर सो गई। सामने वाले को दूसरी चारपाई पर जो सोया है उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ध्यान बहुत रखा। इसलिए दोनों अपने साथ साथ रह करके अपने को एडजस्ट करके चले, अपनी मधुरता को खोया नहीं। अभी आप इस पर थोड़ा विचार करना, एक है वर्णन कर देना कि हाँ हम मधुर हो गए, मीठे हैं, हम सबके साथ मिलनसार हैं, लेकिन जब ऐसी बातें आती हैं, कोई खराटे लेने वाला होता है, उसके साथ सोना पड़ता है, क्या करते हैं, उठ के भाग जाते हैं क्या बिस्तर से? कुछ न कुछ तो अपने को मोल्ड करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, टकराव भी न हो, संबंध भी न बिगड़े। चलो भाई, उसके शरीर की प्रकृति है, उसको हो रहा है, मैं कोई अच्छी विधि अपना लूं, कोई ऐसा हेडफोन लगा लूं, कोई ऐसे रुई लगा लूं जो उसकी आवाज मुझे डिस्टर्ब न करे। चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अगर लक्ष्य रखें कि हमको सबके साथ एडजस्ट होना है छोटी सी बात, क्योंकि कईयों की नेचर होती है अकेले अकेले रहने की, अपने घरों में आराम से एक बिस्तर पर अकेले रह रहे हैं, और जब संगठन में आते हैं चार पांच छह को इकट्ठा रख दिया जाता है, विदेशी लोगों को विशेष होता है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहां ले आई क्यों ले आई, भगवान से मिलने का वो सुख नहीं ले पाते, इतने अच्छे वातावरण का पूरा लाभ नहीं ले पाते, केवल एक अपनी सेंसिटिव नेचर के कारण। हम सबको इस पर बहुत अंडरलाइन करना है कि हमारी इस समय बहुत नाजुक नेचर ना हो, सेंसिटिव नेचर ना हो, हर परिस्थिति में हम अपने आप को एडजस्ट करें। कोई भी बातें आती हैं तुरंत अधैर्य होकर के जवाब न दें, तब मधुरता कायम रहेगी, वो सैक्रीन कायम रहेगी, नहीं तो सैक्रीन टूट जाएगी, उसके अंदर और कुछ मिक्स हो जाएगा। इसलिए बाबा के समान बनने के लिए, संघ का रंग लग जाए उसका, बाबा के प्यार में योग में बैठते हैं तो बाबा जैसे प्यार का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, उसके साथ हम बैठ रहे हैं, उसका हम चिंतन कर रहे हैं, तो उसके रंग में हम रंग जाएं, वो हमारे संस्कारों में शांति पवित्रता आनंद सुख समा जाए, तब तो कहेंगे इसका योग यथार्थ है, नहीं तो योग क्या कर रहा है। कई योग क्या करते हैं, आपको कहा जाएगा कि भाई ज्वालामुखी योग करो, पावरफुल योग करो, आए हो यहां पर अच्छी तरह से विकर्म विनाश करो। अब बेचारों को, कईयों को पता ही नहीं ज्वालामुखी योग क्या होता है, ये बिंदु बिंदु क्या होता है, बनती नहीं वो स्टेज, फिर कंप्लेन करते हैं, यहां तो सुन लेते हैं हाँ कर लेते, बाहर आके प्रश्न पर प्रश्न करते, भाई जी मेरा तो योग लगा नहीं, मेरी तो बिंदु रूप स्टेज बनी नहीं, वो ज्वालामुखी योग की स्टेज बनती नहीं है, मेरे विकर्म विनाश नहीं होंगे क्या, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। और जब तक विकर्म विनाश नहीं होंगे, संस्कारों में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक ये दिव्यता मधुरता रूहानियत अलौकिकता कहां से आएगी। तो विकर्म तो विनाश होने चाहिए, अब योग लग ही नहीं रहा है उसका, तो विकर्म विनाश नहीं होंगे क्या, क्या विधि है। बाबा कहता कोई बात नहीं बच्चे, कोई बिंदु इंदु बनने की मेहनत नहीं करो, क्यों कष्ट कर रहे हो, सुकर्म करो, विकर्म जो हुए हैं ना कर्म इंद्रियों से, उसकी जगह पर खूब सुकर्म करो, अच्छा चिंतन करो, अच्छी रूह रिहान करो, अच्छी अच्छी बातें करो, ज्ञान से अपने आप को भरपूर, जो आप कर सकते हो सहज वो करो, जो नहीं कर सकते उसको साइड कर दो, नहीं होता नहीं चाहिए छोड़ दो, युद्ध नहीं करो, मेहनत नहीं करो। बाबा इस समय अपने बच्चों को युद्ध करते मेहनत करते देखना नहीं चाहता, कहता बच्चे इतनी भक्ति में तुमने मेहनत की है, कितने धक्के खाए हैं, कितने समय तुम लाइन में खड़े रहे हो मेरे दर्शन करने के लिए, मूर्ति के हो भी, अभी मैं बच्चों को मेहनत नहीं देता, धक्के नहीं देता, मेरे बच्चे बन गए हो तो बच्चे बन करके रहो, अधिकारी बन करके रहो, अपना अधिकार रखो, और अधिकार के आधार से बाबा से सब कुछ ले लो। बाबा प्यार का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, केवल चिंतन करके उसके साथ अपने आप को मिलाओ, क्या सचमुच बाबा मेरे साथ है, मेरे अंदर वही सब ईश्वरीय गुण समाते जा रहे हैं। अगर सचमुच आत्मा के अंदर वो सब ईश्वरीय गुण आ जाएं, तो भविष्य दिव्य गुणों से आत्मा अपने आप भरपूर हो जाएगी। दिव्य गुणों को धारण करने की दूसरी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो तो अनेक गुण हैं, 36 गुण 56 गुण कितने सारे गुण लिस्ट हम लोग बनाते हैं तो बनते हैं, लेकिन उन दिव्य गुणों की धारणा का आधार केवल 7 ईश्वरीय गुणों पर अटेंशन दो। आत्मा के जो निजी गुण हैं उनमें गिरावट आई है, और आत्मा के अगर 7 गुण बाबा की याद से, उनके कनेक्शन से, उनकी शक्ति से आत्मा के अंदर भरपूर हो जाए, वो कमी भर जाए, तो वो सब दिव्य गुण अपने आप आ जाए। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा पवित्र स्वरूप है, आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप, ये सात गुण है ना नंबर वार। अब यही सात गुण जो कम हो गए, धीरे धीरे शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, समझ की शक्ति खत्म हो गई। अब हम इसका जो स्रोत है, जहां से गुण आते हैं, जहां वो सागर है, उसके साथ हम बुद्धि को जोड़ते हैं, बस कनेक्ट होते हैं। विधि यथार्थ है, विधि को यथार्थ समझ करके ही करना है। कई बार विधि यथार्थ नहीं होती है तो हम बाबा बाबा कहते रहते हैं, कनेक्शन जुटता नहीं है। क्या है विधि? समान बनना पड़ेगा, समान। ऐसा नहीं मैं तो नीच हूं, मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं है, मेरे अंदर कोई विशेषताएं नहीं है, जैसे भक्ति के अंदर किया, ऐसे अभी भी वैसा ही करते रहो तो बाबा से मिलन नहीं होता, बाबा से प्राप्ति नहीं होती, वो शक्ति नहीं मिलती। इसलिए बाबा ने कहा समान बनो, माना मैं भी आत्मा हूं, तुम भी आत्मा बन जाओ। बस आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के इस देह रूपी रबड़ को उतारो, भूलो। और जब आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के सर्व संबंधों से एक बाबा ही मेरा है, उसे इतना दिल का प्यार, उसका स्नेह होगा, तो वो सब दिव्य गुण, ईश्वरीय गुण हमारे अंदर ट्रांसफर होते रहेंगे, कनेक्शन जुड़ते ही आएंगे। कभी देखो एकदम गहरी साइलेंस का अनुभव होगा, एकदम जैसे बाबा की शांति के सागर में आत्मा समा गई है। कभी पवित्रता का बहुत अच्छा आनंद का अनुभव होगा, कभी सुख का अनुभव होगा। तो ये सब अनुभव बाबा के साथ रहने से होने लगेंगे आत्मा को, और वो गुण अनुभव होते होते हमारे जीवन में आ जाए। जब चिंतन ना हो, कई बार हम चिंतन तो कर लेते हैं, लेकिन जब कोई परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, जब कोई ऐसे कारण बनते हैं, उस समय स्थिति हलचल में आ जाती है। और बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे कैसा भी कारण हो, ये सब निवारण स्वरूप बन करके रहे। क्या करूं, ऐसा कारण था, इस कारण से मैं डिस्टर्ब हो गया, इस कारण से मुझे गुस्सा आ गया, इस कारण से मैंने ऐसा बोल बोल दिया। बाबा कहता है कारण कोई भी नहीं है, ये आपकी कमजोरी है। अगर संकल्प में दृढ़ता है, कुछ भी हो जाए मुझे एक भी शब्द अपशब्द नहीं बोलने हैं, एक भी शब्द जोश में नहीं बोलना है, संकल्प करके जाओ क्या हो सकता, क्या नहीं हो सकता है। मैं आपको बताऊं, मैंने 40-45 साल पहले संकल्प किया था। यहां पर हमारा एक फोटोकॉपी डिपार्टमेंट जब मेरे हाथ में आया, मेरी ऑफिस और कमरा एक ही था, और ऑफिस कमरा होने के कारण जो हमारे साथ सेवादारी थे उनका कमरा अलग था, दूर रहते विज्ञान भवन में। जिसको जब काम पड़े, रात को दिन में, मैं गहरी नींद में सोया हूं, जगा दे, भाई साहब ये काम जरूरी है, अभी करना है। और मैं चिड़चिड़ा हो गया, चिड़चिड़ा होकर के कुछ न कुछ बोल दिया, काम भी किया और डिस्टर्ब भी हुए। क्या है, जरा भी रेस्ट करने जाओ, सोने जाओ, कोई भी टाइम ही नहीं होता, कहीं भी कोई नियम ही नहीं। अंदर से आत्मा चिड़चिड़ी होने लगी। चेक किया, हमने कहा कार्य तो बढ़ेंगे, बाबा कहता है एक दिन आएगा जो आपको बहुत सारे काम एक साथ करने पड़ेंगे, हम अपनी स्थिति क्यों बिगाड़े। ठीक है, करना है तो मुस्कुरा के कर दो, प्यार से कर दो, बोलना नहीं है। आज मुझे इतने वर्ष हो गए, मैंने एक भी शब्द अपशब्द जोश वाला शब्द नहीं बोला, काम तो बहुत बढ़ गए। अगर कोई संकल्प ले ले, संकल्प में शक्ति है। आप ऐसे नहीं सोचो क्या करी, कारण बन गया ना, उसने ऐसे मेरे साथ किया, उसने मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे ग्लानी कर दी, मुझे बार बार डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए वो करेगा तो मुझे तो करना पड़ेगा ना, बोलना पड़ेगा। तो बाबा कहता फिर ये तो आपका कारण है, इसको तो कोई छुड़ा नहीं सकता। अगर आप किसी भी विकार को जीतना चाहते, सच्चे दिल से आप महसूस करते हैं कि मुझे इस विकार को समाप्त करके छोड़ना है, कुछ भी हो जाए, बाबा कहता है हिमालय जितनी बड़ी बात भी आ जाए, लेकिन जहां दृढ़ता की शक्ति है, संकल्प में शक्ति है, वहां कोई भी हिला नहीं सकती, कोई भी बात हिला नहीं सकती। आज अगर आप ये संकल्प लो, मैं बहुत मीठी सैक्रीन बनकर के यहां से जाऊं, मेरी दृष्टि से, हमारे वाइब्रेशन से, हमारे बोलने से, हमारे हर कर्म से लोगों को बस अपनेपन की फीलिंग आए, मिठास का अनुभव हो, ये न कहे पता नहीं कैसा करता है, कैसे रहता है, क्या बोलता है। आप देखेंगे इससे कितना संबंधों में प्यार, आपसी स्नेह, एकता, सब प्रकार की पारिवारिक जीवन के सुख का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन है, कहते हैं ये ज्ञान में चलते हैं लोग, परिवार वाले कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते हैं, गुस्सा तो छोड़ ही नहीं पाए, अभी भी बोल बुरा भला बोल देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। कई लोग तो खाना खाते समय अगर कोई पसंद नहीं आया, गुस्से में आके थाली फेंक देंगे, खाना ही नहीं खाएंगे, मूड खराब कर लेंगे। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, छोटी, लेकिन यही छोटी छोटी बातें विकर्म बनाते बनाते बहुत बड़ा बोझ बना देती है। हम सब अपने पास्ट के विकर्मों को विनाश करने के लिए भट्टी करते हैं, योग करते हैं, तपस्या करते हैं, समय दे रहे हैं, लेकिन वर्तमान में अगर छोटी छोटी भूलें हो रही हैं, अवज्ञाएं हो रही हैं, हम खुद अपसेट हो रहे हैं, दूसरों को अपसेट कर रहे हैं, खुद की मूड खराब कर रहे हैं, दूसरों की मूड खराब कर देते, तो ये विकर्म नहीं है क्या? ये विकर्म हमारी खुशी को पहले छीन लेते हैं। अगर खुशी और हल्कापन नहीं है, अगर आपस में एक दूसरे की दुआएं नहीं है, आप कितना भी योग में बैठो आपका योग लगेगा ही नहीं, मेहनत के सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए बहुत अंडरलाइन करना है, अटेंशन देना है, हम जहां रह रहे हैं, जिनके बीच में रह रहे हैं, जहां पर भी हमारे कुछ हिसाब किताब हैं, मुझे उनके साथ अपने आप को बहुत एडजस्ट करके चलना है, मिल करके चलना है, हर एक की विशेषताओं को देख करके उन्हें विशेष आत्मा की नजर से देखना है, उनके प्रति बहुत शुभ भावनाओं की मिठास रखनी है। बोलने से मिठास नहीं दिखाई दे, लेकिन शुभ भावनाएं हैं, बहुत स्नेह की भावनाएं हैं, सबके कल्याण की भावनाएं हैं, मैं समझता हूं यही आत्मा की मिठास है। अगर इस मिठास से मैं आत्मा संपन्न हूं, सबके प्रति शुभ भावना है, शुभ चिंतन अपने प्रति, शुभ चिंतक वृत्ति सबके प्रति, तो वो भावनाएं मिठास का अनुभव कराती हैं। जो हमारे संबंध में आएंगे उनको लगेगा इनसे मिलने से मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ, इनके पास बैठने से भी मुझे बड़ा सुख मिला, बड़ा आनंद आया। बोले या न बोले, आज हम दादियों के पास जाते हैं, कभी बोलते हैं नहीं बोलते हैं कुछ भी, लेकिन जाते ही वो फीलिंग आती है जैसे अपनेपन की अनुभूति कराती, बड़ा प्यार अनुभव हुआ, बड़ा शक्ति अनुभव हुई, वो स्नेह अनुभव हुआ है, क्या है सब उनके वाइब्रेशन है, वही मधुरता है। ऐसी सैक्रीन है आत्माएं, जो सैक्रीन की तरह एक स्थान पर बैठी हैं, तो सब आत्माएं उनको मिलना चाहती हैं, उनसे बात करना चाहती हैं, उनके दो बोल सुनना चाहती हैं। और आजकल पता क्या कहते हैं, मेरे सिर पर हाथ रख दो, हाथ रखने से भी कुछ मिलता होगा भाई। वैसे तो बाबा मना करता किसी के सिर पर, तुम क्यों हाथ रखते हो, हाथ तो बाबा का है, है? आप सबके हाथ है सिर पर बाबा का है, अनुभव करते हो कौन सा हाथ है? बाबा कहता है स्थूल हाथ तो मेरे है ही नहीं, लेकिन श्रीमत का हाथ अगर है, जो श्रीमत सिर माथे अमृत वेले से रात तक बाबा की जो श्रीमत मिली हुई है, उसको सिर माथे समझ करके बाबा के हाथ का अनुभव करो। अमृत वेले उठना है, बाबा से बहुत बहुत मीठी मीठी रूहरियान करनी है, शक्ति लेनी है, सकास लेनी है, वरदान लेने हैं, कुछ समय मनसा सेवा करनी है, रेगुलर पंचुअल बाबा की मुरली सुननी है, उस पर मनन चिंतन करना है। कर्मयोगी जीवन में कर्म करते हुए बाबा की याद में रहना है, संग की परहेज करनी है, कोई भी अगर नेगेटिव व्यर्थ इधर उधर की बातें सुनाता है मुझे नहीं सुननी है, बाबा को साथ लेकर के कंबाइंड होकर के रहना है। बाबा को शाम को नमाज शाम के समय विशेष फरिश्ते स्वरूप से पूरे विश्व को, प्रकृति को सकाश देनी है। रात को अपना सारा पोता मिल बाबा को सुना करके हल्की ड्रेस में बाबा से गुड नाइट करके सो जाना, ये सारी दिनचर्या ये बाबा की श्रीमत है। और इस श्रीमत प्रमाण जो आत्माएं अमृत वेले से रात तक चलती हैं, उनको कोई भी विशेष पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। जैसे बाबा ने नेचुरल दिनचर्या बनाई, दादियों ने उस नेचुरल दिनचर्या के आधार से अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। हमें कोई भी विशेष रात भर जाग करके मेहनत करके पुरुषार्थ करके, बाबा कहता क्यों इतनी मेहनत करते हो, बहुत सहज योगी, सरल योगी बनो, नेचुरल योगी बनो और श्रीमत सिर माथे बस। कोई भी परमात्म आज्ञा की अवज्ञा न हो, इस पर ध्यान देना बस। बाबा को वो बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं जो आज्ञाकारी हैं, सपूत हैं, हर आज्ञा में हाजी करते हैं, उसी के आगे आधार से वो आगे नंबर ले लेते हैं, जो वफादार हैं। वफादारी का अर्थ समझते हैं क्या है? संबंधों में वफादारी होती है, पति पत्नी के संबंध में वफादारी होती है। एक में ही मेरी आंख जाए, एक बाबा दूसरा न कोई, वो वफादार है। अगर बाबा के साथ दूसरे में भी कहीं बुद्धि जा रही है, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी है, तो वफादारी नहीं है, संबंधों में वफादारी नहीं है। हर परिस्थिति में, हर बात में मेरा तो एक बाबा, और उसी के तरफ ध्यान जाए कि वो पहले हमारे साथ है, फिर वो किसी को भी निमित्त बनाएगा। ईमानदारी है फिर अपने पोता मेल में, हिसाब किताब में, जो कुछ बाबा ने पढ़ाया है उसमें ईमानदारी है। जो हम दूसरों को कह रहे हैं वो पहले मैंने किया है। मैं इस बात को बहुत अंडरलाइन करता हूं, आप सभी भी ये बात सोचना कि हम दूसरों को तो बहुत अच्छा अच्छा सुना देते हैं, कभी उसके सामने पेपर आएगा तो ड्रामा का ज्ञान इतनी अच्छी तरह से उसको बताएंगे कि देखो ये तो ड्रामा है, इसका ये पार्ट था, आप क्यों दुखी हो रहे हो। लेकिन अपने सामने जब वो कोई बात आ जाती है तब ड्रामा कहाँ चला जाता है। एक हफ्ते पहले मैं एक स्थान पर गया था, एक बेटी को माता ने समर्पित किया और अपने घर में बहुत अच्छी वो पाठशाला चलाती थी, बहुत अच्छी ज्ञानी आत्मा, समझदार आत्मा। सबको, कोई किसी के आगे पेपर आए, इस कोरोना काल में तो हरेक के आगे एक आधा पेपर आया ही है, कोई ना कोई संबंधी गए हैं। कहती है मैंने सबको सांत्वना दी, सबको ज्ञान दिया, सबके आंसू पोंछे, सबको खुश किया, लेकिन अचानक उसका ही पति चला गया। और उसके जाने के बाद कहती ज्ञान को मैं इतना यूज करती हूं लेकिन मेरे आंसू नहीं रुकते, मैं डिप्रेशन में जा रही थी इसलिए मैं यहां आई हूं, बट्टे में आई थी वहां। मैंने कहा माता जी दूसरों को ज्ञान सुनाया, कभी अपने को नहीं पढ़ाया? कहती बहुत कुछ कर रही हूं, मेहनत कर रही हूं, लेकिन मैं भूल नहीं पाती। बार बार वो दृश्य, वो बातें, उनके साथ निभाए हुए संबंध याद आते हैं, भूलता ही नहीं। अब इतना ड्रामा का ज्ञान है, ऐसा नहीं है, ज्ञान समझ है, सब बातें हैं, दूसरों को खूब समझाया है, लेकिन अपने लिए कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो बाबा कई बार कहते हैं बच्चे अपने शिक्षक अपने आप बनो, जो कुछ आप दूसरों को सुना रहे हो पढ़ाई से, ईमानदारी ये है कि पहले वो पढ़ाई हमारे जीवन में कहां तक आई है। अगर हमारे जीवन में नहीं है तो दूसरों को पढ़ाएंगे तो वो भी भूल जाएंगे, आज पढ़ेंगे आज कहेंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बाहर जाएंगे भूल जाएंगे। लेकिन अगर मैंने अनुभव से कोई बात कही है तो अनुभव की बात अनुभव तक चली जाती। इसलिए हर एक ध्यान दे, लक्ष्य रखना कि ये ईमानदारी जो बाबा कहता है कथनी और करनी में समानता आ जाए, जो पढ़ रहे हो पढ़ा रहे हो आपके स्वरूप में दिखाई दे। कई बार हम वरदानों का अनुभव करते हैं, सुबह से शाम तक कई लोग फोन करते हैं, मिलते हैं, कहते हैं आज का वरदान बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। लेकिन क्या वो वरदान सचमुच मेरे स्वरूप में आया है? उसी तरह से हमने उसको समझ करके अपने जीवन में उतारा है कि ऐसे ही बाबा ने कह दिया तथास्तु हो जाएगा। कभी भी बाबा कहता है मैं ऐसे तथास्तु नहीं कहता हूं। वरदान दिया है, मेहनत बच्चों को न करनी पड़े, सिखाता हूं, लेकिन विधि से सिद्धि है। विधि अगर यथार्थ है तो कोई मेहनत नहीं है। हर बात में बाबा ने विधियां सिखाई हैं और उस विधि के आधार से जो आत्मा चलती है वो सिद्धि स्वरूप बन जाती है। इसलिए जो भी आप करो चेक करना सचमुच बाबा की बताई हुई विधि प्रमाण में कर रहा हूं तो सफलता मिलती है। मान लो आज कहते हैं बाबा मुझे हर बात में मदद करे, मदद करता है। कैसे मदद करता है? बच्चे तो उसके सब हैं, हजारों में बच्चे हैं। मदद एक को करेगा, दूसरे को नहीं करेगा तो लोग उसको भी कहेंगे। इसलिए कहता है मैं मदद जरूर करता हूं लेकिन मैंने उसकी विधि बनाई है। जानते हो भाई लोग विधि क्या है? बाबा की मदद लेने की विधि क्या है? हिम्मत के आधार पर मदद है। अगर बाबा की मदद हमें चाहिए तो बाबा कहता बच्चे एक कदम तो उठाओ, आगे आ जाओ, फिर मैं मदद कर दूंगा। हिम्मत है बच्चे मदद है बाप। तो विधि से सिद्धि है। योग नहीं लगता है, योग नहीं लगता है, उसका कारण है विधि कहीं मिस हो रही है। विधि पर ध्यान दो, योग तो ही क्या, बाबा की याद ही तो है, बाबा से प्यार है। और उस प्यार में, याद में मेहनत क्यों? कई बार बोलते योग योग छोड़ो, नहीं साकार मुरली में आता योग योग क्या कहते हो, योग तो भक्ति का शब्द है। तो मुझे याद करो और याद के लिए चाहिए प्यार, बस और कुछ नहीं चाहिए। अगर बाबा से प्यार है तो उसकी याद तो नेचुरल बनी हुई है ना। और प्यार किस आधार से होता है? प्यार होता है प्राप्ति के आधार से। जिससे कुछ मिल रहा हो, प्राप्ति हो रही हो, उससे प्यार अपने आप हो जाता है। अब बाबा से हमको इतना सब कुछ मिल रहा है, इतनी ऊंची पढ़ाई है, इतनी ऊंची पालना है, ऐसी श्रेष्ठ मत मिल रही है, सारे ज्ञान का पूरा ही त्रिकालदर्शी बना दिया, नॉलेज फुल बना दिया, सुदर्शन चक्रधारी बना दिया, एक एक बच्चे को क्या नहीं दिया है। कभी अमृत वेले से रात्रि तक, सुबह उठने से रात सोने तक बाबा से मुझे क्या मिला है। एक बार मैंने प्राप्तियों की लिस्ट बनाई थी, दादी ने कहा प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ। अगर प्राप्तियों की लिस्ट हमारे सामने रहती है, भगवान जिस दिन से मुझे मिला, जिस दिन से मैंने दिल से कहा मेरा बाबा, भटकना छूट गया, इधर उधर धक्के खाना छूट गया, व्यसन छूट गए, बुराइयां छूट गई, सब प्रकार से बाबा ने आत्मा को भरपूर कर दिया, संपन्न कर दिया, सब गुण अपने आप आने लगे, नेचुरल गुणवान आत्मा बन गई, इतनी सब प्राप्तियां हुई। और जहां प्राप्तियां हैं वहां संतुष्टता है, जहां संतुष्टता है वहां प्रसन्नता है, जहां प्रसन्नता है वहां कोई भी क्यों क्या कैसे के प्रश्न उठते ही नहीं है। वो प्रसन्न चित्त आत्मा है और उस प्रसन्न चित्त आत्मा के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं के प्रश्नों को समाप्त कर देते हैं। तो हम सब बाबा के बच्चे प्राप्तियों से संपन्न, सब प्रश्नों से अगर पार चले जाएंगे। दो शब्द सुना करके मैं क्लास पूरा करूंगा। एक है कोई भी बातें जो बीत गई हैं, बाबा दो शब्द कहते हैं, एक नॉट दूसरा डॉट। नॉट डॉट, जो बीत गई बातें हैं उसको डॉट लगाने के पहले नॉट करो, नॉट नहीं करते हो, माना ये बात जो बीत गई है उसे मुझे बार बार रिवाइज नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है, नहीं, नॉट माना नहीं, तब डॉट लगता है। अगर डॉट लगाया और फिर भी नॉट नहीं किया तो आज डॉट लगेगा, कल फिर से वो सामने आ जाएगा। इसलिए कई ऐसी बातें हैं बाबा कहता बच्चे संकल्प करो मुझे नहीं करना है, नहीं सोचना है, नहीं बोलना है, और जो कर लिया है उसको डॉट लगा करके अपनी स्थिति को फुल स्टॉप वाली बनाओ। जब संकल्पों को फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास होगा सहज योग लग जाएगा। आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है बिंदी। तीन बिंदियों का तिलक बाबा से सिखा रहा है, ये तीन बिंदियों का तिलक लगा के रखो। अगर इस प्रकार से अभ्यास करें, ये बाबा की बताई हुई जो शिक्षाएं हैं, जो पढ़ाई है, इसको हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो हम सच्चे पक्के बाबा के ईमानदार बच्चे हैं। ये ईमानदारी है, जैसा बाबा ने पढ़ाया ऐसा मैंने धारण किया, समझा है, और उसी का स्वरूप बन करके रहना है। तो आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार बच्चे बाबा की हर श्रीमत में हाजी करके अपने आप को मीठी सैक्रीन बना लो। बस कुछ भी हो, मुझे उत्तेजित नहीं होना है, आवेश में नहीं आना है, आवेग में नहीं आना है। शीतल काया वाले योगी हैं हम, ऐसा बन करके दिखाओ। जब शीतल काया वाले योगी बनेंगे तब लोगों को लगेगा ये बाबा के समान तो सैक्रीन बन गई, मीठा हो गई, मिठास आ गई इसके अंदर। तो हम सबको बाबा के समान बनना है। बाबा के ऐसे मीठे मीठे शब्द, कभी बाबा हमें रियल गोल्ड बनाता है, कभी सैक्रीन बनाता है, भिन्न भिन्न रीति से जो बाबा देखता है दुनिया की तरफ। साकार ब्रह्मा बाबा को कई चीजों के अनुभव होते थे। बाबा को थोड़ा शुगर हो गया था लास्ट में, तो चीनी खाने की मना कर दिया डॉक्टर ने, तो बाबा को सैक्रीन ला करके दिया किसी ने, तो बाबा ने मुरली चला दी। देखो सैक्रीन कितनी अच्छी है, एक छोटी सी गोली डाल दो, मीठा हो जाता है सब कुछ। अरे बाबा हमको अपने समान सैक्रीन बना रहा है। तो बाबा ऐसे ऐसे समय पर कभी कंप्यूटर का टाइटल दिया, हमारे पास जब कंप्यूटर आया, देखो कंप्यूटर के आगे बच्चे कोई भी बात रखो सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। ब्रह्मा बाबा के जीवन आपके लिए कंप्यूटर है। बाबा ने कंप्यूटर पर मुरली चला दी। फिर मेरे पास एक फोटो स्टेट मशीन आई, तो बाबा ने कहा देखो बच्चे कैसे कॉपी निकालती है, जैसी कॉपी रखो वैसी निकल आती। अरे आप बच्चे को सब फोटो कॉपी बनना है, ब्रह्मा बाबा की फोटो कॉपी बन जाओ। तो ये सब मुरलियां कैसे चली, कोई भी चीज ऐसी मधुबन में आई, हम लोगों ने बताई बाबा को, दादी को, दादी ये ऐसी मशीन आई है, इस पर ऐसे कागज रखते हैं, उसकी कॉपी बन जाती। बाबा ने फोटो कॉपी की मुरली चला दिया। तो ये सब बाबा की जो मुरलियां चली हैं, समय अनुसार बाबा हम सबको सिखाता है कि ये साइंस के साधन जो भी निकले हैं, ये साइलेंस से निकले हैं, आपकी जीवन ऐसी बनी है तब लोगों ने उसको कॉपी किया है और उसको इस तरह से तैयार किया। हम सब बाबा के महावाक्यों के भाव को समझें, कि वह शब्दों में अटक न जाएं, विशेषताओं को समझें कि मुझे संपूर्ण पावन बनना है, सर्व गुणों से संपन्न बनना है, संपूर्ण निर्विकारी जीवन, निरहंकारी से रहित, एकदम नम्र चित्र, निमित्त भाव वाली जीवन, वही मधुर जीवन है, वही सैक्रीन है। ठीक है, ओके, ओम शांति। अभी हम सभी आधा घंटे के लिए चलेंगे बाबा के पास, कि बाबा को यहाँ ही बुलाएंगे। कोई को भी अगर उठना है तो अभी उठना, आधा घंटे के बीच में कोई नहीं उठना। पहले गीत बजा दो, तब तक ये सब फ्रेश होके आ जाएंगे।
बच्चे मीठे बच्चे बोलिए।
चमकते हुए सितारे का अनुभव करो। मैं आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान चैतन्य शक्ति हूं। बहुत प्यार से निराकार और आकार बाप और दादा को इस सभा में आने का निमंत्रण दो। हरेक उनके साथ कंबाइंड स्वरूप की स्थिति में बैठो। बाप दादा के मध्य आत्मा उनके साथ का अनुभव कर रही हूं। सर्वशक्तिमान पतित पावन सर्व गुणों का सिंधु उनके समीप में आत्मा कंबाइंड होकर उनके सर्व दिव्य गुणों से संपन्न बन रही हूं। अपने मास्टर सर्वशक्तिमान परम पवित्र स्वरूप में स्थित होकर इस पूरे वायुमंडल में उन शक्तियों की सकास फैलाओ। अनुभव करो शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति। इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही है। मैं शांति के सागर में समाने का अनुभव कर रही हूं। सभी अपनी निराकारी वतन में उस मूल वतन घर में ज्ञान सूर्य बाबा के बिल्कुल समीप गहन शांति की पवित्रता की अनुभूति करो। उस घर में आत्मा प्यार में समा गई है और लवलीन स्थिति का अनुभव करो।